ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஸ்ருத்யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே சதம் தேவகந்தர்வாணாம் ஆனந்த சைக பித்ரீணாம் சிரலோகலோகானாம் ஆனந்த ஸ்ருத்யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே சதம் பித்ரீணாம் சிரலோகலோகானாம் ஆனந்தா சைக ஆஜானஜானாம் தேவானாம் ஆனந்த ஸ்ருத்யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே சதம் ஆஜானஜானாம் தேவானாம் ஆனந்தா சைக கர்ம தேவானாம் தேவானாம் ஆனந்த யே கர்மணாம் தேவான் அப்யந்தி ஸ்ருத்யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே சதம் கர்ம தேவானாம் ஆனந்தா சைகோ தேவானாம் ஆனந்த ஸ்ருத்யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே சதம் தேவானாம் ஆனந்தா சைக இந்திரஸ்ய ஆனந்த ஸ்ருத்யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே சதம் இந்திரஸ்ய ஆனந்தா சைகோ ப்ரஹஸ்பதேர் ஆனந்த ஸ்ருத்யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே யே சதம் ப்ரஹஸ்பதேர் ஆனந்தா சைக ப்ரஜாபதேர் ஆனந்த ஸ்ருத்யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய தே சதம் ப்ரஜாபதேர் ஆனந்தா சைகோ ப்ரஹ்மண ஆனந்த ஸ்ருத்யஸ்ய சாகாமஹ தஸ்ய பீஷா அஸ்மாத் வாத பவதே அஸ்மாத் பரப்ரஹ்ம பீஷா கத பயேன வாயு ஜல்தா ஹே. வாயு தேவதா ஹே, சமர்த்த ஹே. जो वायु देवता हनुमान के पिता है, समर्थ है, किंतु परमात्मा के भय से अपने कर्म व्यापार करते हैं. भीष उदयति सूर्य, सूर्य भगवान, सूर्य भी परमात्मा भय से उदय समय को प्राप्त करते. समय पर उदय थोड़ी देर करेंगे, कोई कोई कहते आज छुट्टी है थोड़ा आराम से सो जाए, एक घंटा उठने में देर करते हैं. ये नहीं, उदय बिल्कुल समय पर, ठंडी हो गर्मी हो, वर्षा हो ठंडी हो कुछ हो, समय पर सूर्य भगवान उदय हो जाते हैं. अन्य लोग भले सो जाएंगे, भगवान सूर्य तो उदय समय पर होते हैं. भीषा अस्मात अग्निश्च इंद्रश्च, अग्नि इंद्र भी, देवराज इंद्र भी है स्वर्ग में राजा, वो भी इसके भय से. मृत्यु धावती पंचम, और इसके यमराज के क्या कहना, मृत्यु धावती पंचम ये दौड़ता रहता है दिन रात, ठंडी गर्मी जब जहां ड्यूटी है चलो उसे लेकर चलो, उधर भेजा उधर भेजो, उसके ले आओ उसके ले आओ, स्मशान राम नाम सत्य सब चलता रहता है पूरा. ये परमात्मा के भय से सब प्रवृत्त होते हैं, जो समर्थ ईश्वर भी. असामान्य क्या कहना है, अभी सा ऐसा आनंद से मीमांसा भवती. अभी आनंद का विचार करते, रसो है वही लब्ध आनंदी भवती, रसो विषय का परमात्मा आनंद रूप है, रस रूप आनंद है, वो सबको आनंद देने वाला है परब्रह्म. वस्तु तो आनंद मुख्य आनंद तो परब्रह्म आपका स्वरूप ही आनंद ही है. बाकी जो आनंद होता है विषय प्राप्त होने पर इष्ट वस्तु की प्राप्ति से आनंद होता है. इष्ट वस्तु की प्राप्ति से आनंद क्या होता है, वस्तु में कहां आनंद, कहां आनंद आया. इष्ट वस्तु जिस वस्तु की प्राप्ति होती है उसी वस्तु की इच्छा उसी समय प्राप्त होने के बाद इच्छा होती निवृत्ति होगी. ये जो वस्तु की इच्छा करते रहते हैं, ये सब इच्छा जड़ को हिलाने जैसे है, और तमोगुण के कारण कलमश है जो जल को ढाके रखे. हिलता है जल अथवा मैला ढका हुआ तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता है. इच्छा चांचल्य है, वो थोड़ी देर इच्छा समाप्त होने से थोड़ी देर अंतकरण स्थिर हो जाने पर आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब हो जाता है. इसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है, मिल गई वस्तु की वस्तु मिल गई, थोड़ी देर इच्छा शांत हो गई, आनंद का प्रतिबिंब हुआ, आरोप करते इससे सुख मिला. सुख किसे मिला, इच्छा की निवृत्ति से. कामना के अभाव से सुख मिला, कामना के कारण चांचल्य से सुख पता नहीं चलता था, कामना की निवृत्ति से सुख मिला, आरोप करते इससे सुख मिला. और जितने जितने विषय में अनासक्ति इच्छा का अभाव, इतने इतने आनंद अधिक है. अभी इसमें आनंद विचार करते हैं, एक एक आनंद से, मनुष्य आनंद से लेकर के सौ गुणा आनंद कहेंगे. जिस आनंद की इच्छा नहीं करता है ज्ञानी, उसको सौ गुणा आनंद मिलता है. इसे आनंद की इच्छा नहीं करेगा तो उसे सौ गुणा आनंद प्राप्त करेगा. ये क्रम से आगे के सौ गुणा सौ गुणा सौ गुणा सौ गुणा. इसकी आनंद की इच्छा नहीं करेगा तो ज्ञानी को सौ गुण आनंद, और इसे आनंद की इच्छा नहीं करेगा तो उससे सौ गुण आनंद। ऐसे करते करते ज्ञानी के आनंद विचार करते हैं। पहले एक लोक में कौन सबसे बड़ा आनंद किसको मिलता है, सबसे आनंदी लौकिक आनंद किसके हुए, ये विचार करते पहले कौन होगा। पहले युवा स्याद साधु युवा अध्यायक, युवा हो, युवा अवस्था में ही विषय भोग करेगा, सुखी होगा। वृद्धावस्था में तो खा भी नहीं सोता है, कहेंगे ये चीज खाना ये चीज नहीं खाना, दांत दर्द है, फिर डॉक्टर मना करेगा। तो युवा स्याद, अच्छा युवा होने पर भी साधु हो, असाधु हो अनाचार करता है, निंदित कर्म करता है तो सुख प्राप्त नहीं करता। थोड़ी देर कभी सुख हुआ कभी दुख मिलेगा, कभी कुछ करता है कभी पकड़ा जाता है, कभी दुखी होता है कभी कुछ होता है। युवा हो और साधु युवा हो, साधु हो और कोई साधु है किंतु युवा अवस्था नहीं, बूढ़ा हो गया। तो बहुत लोग पहले तो बड़े दुष्ट स्वभाव रहते हैं, उम्र ज्यादा होने पर थोड़े समझदार होते हैं, फिर सत्संग करने की इच्छा होती किंतु उस समय समय चला गया, करने का समय चला जाता है। करने का समय तो जैसे धन कमाने का समय है, ऐसे धर्म करने का समय, ज्ञान प्राप्ति का समय प्रथम अवस्था में जो कुछ कर सकता है, प्रारंभ अवस्था में जो लगता है वही बुद्धिमान है। जो सोता आगे करेंगे आगे करेंगे आगे करेंगे, धन कमाने के कोई सोता है अभी क्यों, थोड़ा बाकी बुढ़ा होने के बाद करेंगे, कोई सोचता है नहीं, धन कमाने के तो शुरू से लग जाता है। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए कहते बाद में करेंगे, वो समय आएगा, किन्तु वो भी समय इसी समय जो करता है वही कर पाता है आगे। ऐसे जब जो समय सामने है उसी को पहले प्रधान कार्य में लगाना चाहिए, उसको तो गौण कर देते हैं परमात्मा प्राप्ति के, और धन को प्रधान कर देते हैं। जिसके जिसमें प्राधान्य बुद्धि वो मिल जाएगी, और जिसको गौण कर दिया तो गौण हो जाएगा। अब वृद्ध ताव चिंता मग्न पारे ब्रह्मणी कोपी न लग्न, भगवान कहते वृद्धा होने पर कति चिंता बढ़ती है। युवावस्था में जितनी चिंता है धन कमाने के लिए, वृद्धावस्था में उसको मालूम है जाना है तो भी चिंता है, क्या होगा धन इतने है, पोते के लिए कितने धन है, उसके लिए क्या धन है, आगे क्या होगा, इन लोगों को खर्च कर लेते ज्यादा, इसका भी बच्चा होगा वो कैसे उसको बचेगा, बहुत ही चिंता, आगे की चिंता। स्वयं जाने का समय है वो चिंता करते, घर लोग सब डांटते हैं आप छोड़ो इतने खर्च कर दिया, क्यों इसे खर्च कर दिया, उनको लगता है बहुत खर्च कर दिया। पहले 5 रूपया में हो जाता अभी 500 रूपया में लाया, अरे पहले तो 1000 में हो जाता था अभी 2 लाख खर्च कर दिया। यही स्वभाव, ये बीमार हमेशा चलता रहता है। जो अभी बूढ़े होते हैं ना वो सुनेंगे, उनके पिता माता भी इसे कहते थे, वो कहें जो हम 1 पैसा से करते थे आजकल 10 रूपया खर्च कर दिया, 10 रूपया सुनेंगे तो पहले कहते 10 रूपया खर्च कर दिया किसको दे, अरे 10 रूपया तो बहुत डरते थे, अभी 100 रूपया तो कहते थे, 1000 रूपया, अभी 1 लाख रूपया हो तो 1 लाख भी कम हो गया, 1 लाख तो कोई बात नहीं, अगे वहां गया 10-20 लाख खर्च गया, चलो करोड़ तो खर्च नहीं हुआ। ये सब है बड़े बड़े पर चिंता होती है, अपने लिए नहीं आगे के लिए चिंता। इसलिए युवावस्था में आनंद भी प्राप्त होता है, युवावस्था में कोई साधन भी कर सकता है, और युवा हो साधु भी होना चाहिए, साधु हो युवा हो तो भी अध्यायक वेद शास्त्र पढ़ने वाला, ये भी आनंद प्राप्त करने के लिए। वास्तव आनंद जो सात्विक आनंद, सत्वगुण अधिक होने से सात्विक आनंद मिलता है, रजगुण से तमोगुण से जो आनंद है वास्तव आनंद नहीं, अधिक समय नहीं रहता है, स्थायी नहीं होता है। सात्विक हो तो शास्त्र के अनुसार अधित वेद हो तो अध्यायक अध्ययन वेद शास्त्र अध्ययन किया, साधु युवावस्था है। इतने होने के बाद आशिष्ठ दृढ़िष्ठ बलिष्ठ, आशा इच्छा करने वाला चाहता है वो करने के लिए, कोई प्रमाद करेगा तो वो सुख प्राप्त नहीं करेगा। अच्छा इच्छा तो करता है किंतु बलवान होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, कोई दृढ़ दुर्बल है तो नहीं कर पाता, ना ही खा पाएगा, स्वास्थ्य खराब है दुर्बल है नहीं खा पाएगा, जाना कहते नहीं चल पाएगा, बहुत इतने दुर्बल है तो खाने के लिए डरते थोड़ा खाएंगे, कुछ लोगों का ऐसे छोटेपन से भी कम खाने का, ऐसा खाने के लिए सब विषय मिशा है। हाँ संन्यास तो बाद में बताया, ये जो संन्यास कहा गया 2 प्रकार संन्यास है, एक क्रम संन्यास, क्रम क्या है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, उसके बाद 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे, ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेत, गृह भूतवा वन्य भवेत, वन्य भूता प्रव्रजित। 25-50 वर्ष जहां हो गया, वैराग्य हो अथवा नहीं हो तो वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, वहां जबरदस्ती 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाना चाहिए। अब 75 वर्ष जो पूरा हो गया तो सन्यास लेना चाहिए। ये जो सन्यास है इसको होते क्रम सन्यास। ये क्रम सन्यास कलयुग में निषिद्ध है। वैराग्य नहीं होने पर भी 75 के बाद घर से जा भागो, स्वयं भाग जाना चाहिए। संभव है आजकल कोई भागे? 50 वर्ष बाद ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, यह ऋषिकेश से बना गया वानप्रस्थ आश्रम, लिखा गया वानप्रस्थ आश्रम, वो वानप्रस्थ आश्रम नहीं है। बड़े बड़े मकान बना हुआ, सब व्यवस्था, वहां जाकर रह करके भोजन बनाकर खाओ, नौकर लेकर रहते, चार छह महीना रहते, वो वानप्रस्थ आश्रम नहीं। वानप्रस्थ आश्रम तो अरण्य में रह करके तप करना है, तप प्रधान, बहुत तप करने के लिए कहा गया। तप करे और पेड़ पौधा को पानी दे, जंगल में रहे, वो तप करने के लिए जो असमर्थ हो जाता है उसके लिए कहा कष्ट अग्नि प्रज्वलन करके शरीर को समाप्त कर दे। वानप्रस्थ तप प्रधान, गृहस्थ कर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान संन्यास। तो वैराग्य नहीं होने पर जो क्रम संन्यास कहा गया, ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेत, गृह भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। यदि वे इतर था ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहादवा वनादवा, यदि वा इतर था, वहां पहले क्या कहा, वैराग्य नहीं होने पर भी 25 वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम में गया, 50 पूरा होने के बाद वानप्रस्थ, 75 होने के बाद संन्यास। यदि वा इतर था, यदि वैराग्य है तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से वैराग्य हो गया, पूरा वेद भी नहीं पढ़ा, संन्यास। गृहादवा, कोई गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो गया, वैराग्य हो गया तो भी यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, जब वैराग्य हो उस समय छोड़ो। वनादवा, वानप्रस्थ आश्रम में है, वैराग्य हो गया तो संन्यास ले, जब वैराग्य हो ये वैराग्य संन्यास कलयुग में है, क्रम संन्यास नहीं है। इसे डरना नहीं कि 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाना चाहिए, 75 के बाद संन्यास लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ये नहीं। किंतु वैराग्य है तो संन्यास ले सकता है, ये कलयुग में है। वैराग्य नहीं तो संन्यास के लिए भी निषिद्ध है। कोई जरूरी नहीं कि वेश बना देने से कुछ परमात्मा प्राप्ति, बहुत लोग साधु वेश बना देते हैं, बना देंगे उसके बाद संन्यास धर्म वेदांत श्रवण मन निध्यासन नहीं करके फिर अलग कुछ करते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करना, मकान बनाना, ये संन्यास आश्रम का कर्तव्य नहीं है। ज्ञान प्राप्त करे, अपने को पहले साक्षात्कार करे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, उसके बाद कुछ होता है। नाम ले लेते, भगवान शंकराचार्य ने मठ बनाया था, ठीक वो बनाए थे जो जिस अवस्था में जिस स्थिति में जिस प्रचार धर्म प्रचार के लिए ऐसी स्थिति हो जाए तो कोई निषेध नहीं कर सकते, किंतु पहले कुछ नहीं करके थोड़ा पढ़ाई करके फिर लगे तो व्यर्थ होता है। तो वैराग्य के बिना संन्यास कलयुग में निषिद्ध है, नहीं लेना है। तो ये संन्यास के लिए कहा, वैराग्य है तो किसी अवस्था से संन्यास ले सकते हैं, और जो वैराग्य नहीं तो गृहस्थाश्रम में रहकर सद्गृहस्थ अपने कर्म करे। कर्म करते समय सद्गृहस्थाश्रम में रह करके भी यदि कर्म ठीक करे तो परमात्मा प्राप्त कर सकता है। गृहस्थाश्रम इसलिए बहुत कुछ नियम है, बड़ा कठिन है सब करना, फिर जितने हो सकता है करना चाहिए करते हैं। असंभव नहीं जितने कहा गया, जिस आया अग्निहोत्र करे, चातुर्मास करे, अग्रायन व्रत करे, ये सब कर्म तो आजकल बड़े कठिन है, फिर भी जितने हो सकता है करे तो परमात्मा के शरण में रहे। और वेदांत श्रवण करने के सबका अधिकार, ज्ञान में भी सबका अधिकार, ज्ञान हो जाए तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई रुकने वाला नहीं। अब यहां विचार करते हैं, ज्ञानी के आनंद बताने के लिए मेरे ब्रह्मलोक आनंद आदि बताएंगे, पर लौकिक आनंद होता है युवा स्यात साधु युवा अध्यायक, साधु युवा हो, अध्ययन किया, इच्छा करने वाला हो, दृढ़ हो और बलवान भी हो, इतने सब होने के बाद धन नहीं तो क्या सुख मिलेगा। इसे कहा तस्य इयम पृथ्वी सर्वा वित्त से पूर्णा स्यात, उसके सारे पृथ्वी भी मिले, पृथ्वी का राजा बन गया दुर्भिक्ष हो तो वित्त से पूर्णाशा धन से भरा हुआ ये सारे पृथ्वी के अधिपति राजा हो गया। युवावस्था है, साधु सदाचारी है, वेद अध्ययन क्या है और आशिष्ट दृढ़ बलवान सब संपन्न है, ये जो आनंद को प्राप्त करेगा स एको मानुष आनंद, मनुष्य के आनंद में एक मानुष आनंद हुआ, ये हो गया मनुष्य में इतने सबसे आनंद वही प्राप्त कर सकता है। ऐसे करने वाले दुर्लभ है, कम ही कम किसके पास ऐसा, युवावस्था हो, साधु वेद अध्ययन किया, दृढ़ रोग रहित हो, धन संपत्ति भरा हुआ, ऐसे हो तो एक आनंद हुआ। ते शतम अनुसानंद, इसका सौ गुना करना, सौ गुना करेंगे तो अनुसानंद का सौ गुना होगा, सौ गुना होने पर जो आनंद होगा स एक मनुष्य गंधर्व नाम आनंद। गंधर्व में एक मनुष्य गंधर्व होता है और एक देव गंधर्व होते हैं, तो ये हो गया मनुष्य गंधर्व नाम आनंद। मनुष्य गंधर्व है जो मनुष्य पहले होकर के आगे कुछ कर्म करके कर्म उपासना से प्राप्त करते तो मनुष्य गंधर्व, पहले मनुष्य हुआ फिर कुछ कर्म उपासना करके गंधर्व को प्राप्त हो गया तो मनुष्य गंधर्व हुआ। मनुष्य आनंद में सब जो मानुष आनंद कहा, एक मानुष आनंद एक विचार कर क्या या कौन प्राप्त करता है सोचना नहीं, इतने सब हो जो आनंद प्राप्त होगा ये मनुष्य में सबसे अधिक आनंद होगा, ये आनंद होगा। ऐसे युवा अवस्था हो, साधु हो, वेद अध्ययन किया, धन संपत्ति है, निरोग है, बलवान है, संपन्न है, वो आनंद को प्राप्त करेगा, एक आनंद हुआ। उसके सौ गुणा आनंद प्राप्त होता है मनुष्य गंधर्व को, पहले मनुष्य होकर के उपासना कर्म करे गंधर्व हो गया तो मनुष्य गंधर्व हुआ। उसके बाद मनुष्य गंधर्व आनंद और श्रोत्रिय से काम हतस्य, जो श्रोत्रिय है वेद आदि अध्ययन किया, कामना रहित, कामना रहित किसमें, पूर्व आनंद में, मानुष आनंद की तृष्णा से रहित हो गया तो उसको मनुष्य गंधर्व आनंद प्राप्त हो जाता है। ये सब पर्याय में श्रोत्रिय से च काम हतस्य, श्रोत्रिय से च काम हतस्य, सब पर्याय में बराबर कहेंगे। और श्रोत्रिय है शास्त्र ज्ञान संपन्न और अभिजिनता पाप रहित, कुटिलता रहित, किंतु अकाम हत में विशेष है, जो पूर्व जिस कामना जिस विषय से कामना रहित तो होगा उसका सौ गुणानंद प्राप्त होगा। मनुष्य सुख में कामना रहित तो हो जाए तो मनुष्य सुख का सौ गुण प्राप्त करेगा। अच्छा, यदि आगे कोई आनंद आएगा, इंद्रलोक में जो आनंद है, इंद्र को बहुत आनंद क्रम से आएगा, जो इंद्रलोक के आनंद में काम रहित हो गया उसको क्या आनंद मिलेगा, इंद्र की सौ गुण बृहस्पति में। इंद्रलोक में जितना आनंद क्रम से आएगा, एक स्थल में जितना आनंद इंद्र को प्राप्त होता है उसी आनंद में निष्काम हो गया तो उसको उसका सौगुणा बृहस्पति आनंद प्राप्त होगा। उत्तर हो, जिस आनंद में कामना रहित हो गया उसका सौगुणा प्राप्त करेगा। अभी पहले मानुष आनंद कह करके वहां श्रोत्रिय से अकाम हो तो सर नहीं कहा, मानुष आनंद कह दिया, उसमें तृष्णा रहित कामना रहित हो गया, अकाम हो तो हो गया तो उसको मनुष्य गंधर्व आनंद प्राप्त होगा। ते ये शत मनुष्य गंधर्वान आनंद, मनुष्य गंधर्व का जो आनंद है सौगुणा करना, सौगुणा करें तो देव गंधर्वाना आनंद, देव गंधर्व, ये मनुष्य गंधर्व है। उसके बाद मनुष्य गंधर्व में आनंद क्या है, कारण क्या है, कोई द्वंद शीत उष्णादि उनको नहीं है, सहन कर लेंगे, कोई उनको रुकने वाला नहीं, कुछ सिद्धि मिल जाती, अंतर्धान हो सकते हैं, जहां जा सकते हैं, कौन गंधर्व, इसे उनका आनंद अधिक हुआ। और जितने मनुष्य गंधर्व का आनंद हुआ उसके सौ गुण होता है देव गंधर्व, देव गंधर्व है तो वो भी गंधर्व है, किंतु देव गंधर्व जन्म से ही गंधर्व है, पहले मनुष्य था, प्राप्त हुआ गंधर्व हो गया मनुष्य गंधर्व, और जो पहले से ही गंधर्व है जन्म से ही, ये होके देव गंधर्व, देव गंधर्व हो गया मनुष्य गंधर्व, सौ गुण आनंद हो गया। और स एक देव गंधर्वाणाम आनंद हुआ। श्रोत्रिय से अकाम हत्य, यहाँ अकाम हत्य किस में होना चाहिए बताओ, नहीं मनुष्य गंधर्वानंद में अकाम हो तो होगा तो देव गंधर्वानंद प्राप्त करेगा। ते ये सतम देव गंधर्वाणाम आनंद, देव गंधर्व के आनंद का सौ गुण करना, वो आनंद किसको प्राप्त होगा, पितृनाम पितृलोक में, चिरलोक लोकानाम चिरलोक वास करने वाले पितृलोक आनंद, पितृलोक चिरकाल स्थायी जो पितृलोक उनका आनंद प्राप्त होगा। तो उनको जो आनंद प्राप्त होगा वो आनंद और किसको मिलेगा, श्रोत्रिय से अकाम होता, श्रोत्रिय तो बराबर अकाम होते किसी में होने से मिलेगा, देव गंधर्व आनंद में अकाम होता होगा तो उसको क्या मिलेगा, सौगण पितृलोक आनंद। ते ये सतम पितृनाम चिरलोक लकानाम आनंद, पितृलोक का जो आनंद है चिरलोक स्थायी रहने वाले उसका सौगुणा करो, सौ गुणा करेंगे तो किसको प्राप्त होगा, आजान जे देव स्वभाव से देवता आजान जे देवलोक है, आजान के देवलोक है, वहां स्थित जो देवलोक देव में स्थित स्मार्त कर्म करके प्राप्त किए उनको प्राप्त होता है आ जाना देवानंद। और श्रोत्रिय काम होता है या अकाम होते किस मनुष्य नहीं कर्मदेव नहीं अभी कर्मदेव कहाँ है पितृलोक आनंद में नहीं हाँ एक पितृनाम चिरुलो पितृ का जो आनंद उसमें अकाम होते होगा तो आजाना जाना देव का आनंद को प्राप्त करे श्रोत्र से जो अकाम होते से। देखो पहले क्या आया यहाँ एक पितृनाम चिरुलोक लोकानाम आनंद वो किसको श्रोत्रिय अकाम होते को प्राप्त हुआ अकाम होते किसमें देवगंधर में उसका स्वर्ण कर दिया आजान अजा देव का आनंद वो आनंद श्रोत्रिय अकाम होते प्राप्त होगा किसमें अकाम होते होने पर हाँ पितृनाम पितृलोक आनंद पर। और इतने ये सतम आजान अजाना देव का आनंद है एक कर्म देव का आनंद होता है और जो कर्म देव का आनंद है ये कर्मणा देवान अपियंती कर्म करके देवत्व को प्राप्त करते कर्म देव हुआ उनको सौगुणानंद प्राप्त होता है आजाना देव की अपेक्षा श्रोत्रिय से अकाम होते से किन्तु अकाम होते किसी मन से ही आजाना जो देवानंद में अकाम होता होगा सौगुणानंद प्राप्त करेगा। जो ते ये सतम कर्म देवानामानता कर्म करके देवत्व को प्राप्त करते कर्मदेव उनका सौगुणानंद होगा सय को देवानाम आनंद वो देवता का आनंद एक ही स्वर्ग में। तो और श्रोत्रिय से अकाम होता से अकाम होते किस में होगा कर्मदेव में अकाम होता होगा तो देवता का आनंद प्राप्त करेगा। और ते ये सतम देवानाम आनंद स्वर्ग में जो देव है सो गुण आनंद इंद्र को प्राप्त होगा सय के इंद्र से आनंद इंद्र का जो आनंद है उसको वो भी प्राप्त करेगा श्रोत्रिय अकाम होता किसी में अकाम होता न पर देव आनंद में अकाम होता होगा तो इंद्र आनंद प्राप्त करेगा। ते ये सतम इंद्र से आनंदा इंद्र के आनंद सौ गुणा करो जितने आनंद होगा सय का बृहस्पति का आनंद है और बृहस्पति का जो आनंद है वो भी श्रोत्रिय अकाम होते को प्राप्त होगा। श्रोत्रिय तो श्रोत्रिय सबके बराबर है कुटर नहीं हो किन्तु अकाम होते होने पर बृहस्पति आनंद प्राप्त करेगा अकाम होते किसी में होना चाहिए इंद्र के सो गुण आनंद बृहस्पति के आनंद है बृहस्पति के आनंद श्रोत्रिय अकाम हतों को प्राप्त होता है अकाम होते किसी में होना चाहिए इंद्र के आनंद में अकाम होता होगा तो कितना आनंद प्राप्त करेगा बृहस्पति आनंद ते सतम बृहस्पति आनंद सैक प्रजापति आनंद बृहस्पति देवराज इंद्र देवताओं के गुरु है और उनको जो आनंद प्राप्त उसका सौ गुण आनंद करेंगे तो प्रजापति विराट का आनंद होता है और विराट का आनंद प्राप्त करे श्रोत्रिय काम होते किसमें काम होते न पर बृहस्पति आनंद में काम होता होगा तो कितना आनंद प्राप्त करेगा विराट ते सतम प्रजापति आनंद है विराट का सौ गुणा करो सैक ब्राह्मण आनंद ब्रह्म हिरण्य गर्भ ब्रह्मा आनंद श्रोत्रिय से अकाम होतस्य हिरण्य गर्भ का जो आनंद उसको प्राप्त करके अकाम होता श्रोत्रिय किसमें अकाम होते होने पर हाँ विराट प्रजापति आनंद में अकाम होता होगा तो हिरण्य गर्भ आनंद को प्राप्त करेगा। हिरण्य गर्भ आनंद ये जितने कर्म उपासना से प्राप्त होगा सबसे अधिक आनंद है एतस्य मात्रा उपजीवन्ति का इसके आनंद के मात्रा अल्प कोई बिंदु के जैसे समुद्र में जैसे बिंदु इसके आनंद को सब लोग आश्रित होते हैं और ये आनंद अकामहत्व जितने जितने अधिक है आनंद इतने इतने बाकी श्रोत्रिय अवृजन सब में बराबर है अर्थात जिसमें कामना रहित होगा उसके अधिक जैसे विषय प्राप्त होने पर उसकी कामना रहित होने से आनंद प्राप्त होता है जिस आनंद में कामना रहित होगा उसका सौ गुण आनंद प्राप्त करेगा। और ऐसे क्रम से इसलिए कहा है बिल्कुल आनंद कामना रहित तो हो जाना ये नहीं क्रम से इसे बताया इतने इतने निष्काम हो तो सौ गुण आनंद प्राप्त होता है और जब बिल्कुल कोई कामना है ही नहीं पर आनंद उसमें और कोई गुणा हिसाब करने का नहीं निरति से नित्य आनंद वास्तव आनंद हो ये निष्काम होने पर कामना जितने जितने है इतने इतने दुख कम इतने सुख कम दुख अधिक है। जितने जो बहुत इच्छा करता है वो ज्यादा दुखी होता है। अभी लोक में जितने जितने इच्छा आप साधक स्वामी अमन हो करो, जब बहुत इच्छा है बड़े परेशानी है, इच्छा विचार करके थोड़े थोड़े कम करते तो फिर सुख है। जितने अपने पास है उसके अनुसार चलने के लिए हिसाब करके अपने हिसाब से अलंबधि पर्याप्त संतोष हो गया, जितने पर्याप्त अब इसमें चलाना है ठीक है, अधिक जरूरत नहीं। ऐसा करके जो सबसे समेट करके रहते हैं थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं। जो चाहते और मिला और मिला और फैलाना चाहते तो फैलाना चाहते तो दुख धन भी मिले दुख ही मिलेगा और इच्छा भी बढ़ेगी संतोष नहीं होगा। और संतोष होकर सबसे काम कर चला इतने हो गया संतोष, संतोष होकर के समेट लिया तब आनंद प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा धन है संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण श्रीमान से कयस्तु समस्त तुष। भगवान शंकराचार्य प्रश्न उत्तर में कहते को वा दरिद्र, दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा अधिक है वो दरिद्र। ये नहीं क्या इतने रुपया से कम होगा तो दरिद्र, इतने से होगा तो धनी, ऐसा नहीं। विशाल तृष्ण, तृष्णा अधिक है तो ही दरिद्र है। जितने भी संपत्ति हो तृष्णा अधिक हो तो दरिद्र। और फिर श्रीमान किसको कहेंगे? ये समस्त तोष जो संतुष्ट है वही श्रीमान है, जितने उसमें संतुष्ट। अच्छा कितने रुपया होने पर मनुष्य संतुष्ट होता है उसके साथ कोई संबंध नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही सामान्य संतुष्ट है। कई थैली चलाने वाले अपने खुश, मजदूरी करने आने वाले खुश है, भिक्षा मांगने वाले सन्यासी भी खुश है, काल को क्या खाना वो पता नहीं किंतु मस्त है। ये फकीर थोड़ा जाकर के नारायण हर कर ले लिया आनंद है। ये जो आनंद कुछ विशेष है साधन करके प्राप्त करने से तो आनंद प्राप्त होता है, जिसके कारण सब छोड़कर पहले भी राजा महाराज सब छोड़कर रह जाते थे, अभी सन्यासी महात्मा सब छोड़ करके रहते प्रसन्न रहते, कोई चिंता नहीं आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये जो आनंद है आनंद की सीमा इसे सौगुणा सौगुणा करते करते जहां तक तो हिसाब करते तहां तक तो कम है और आगे हिसाब नहीं है। वो आनंद अनंत स्वरूप है, वो आनंद वस्तु तो आनंद तो वही है।